आर्यांश को दीवा की जिंदगी से गए हुए पूरे 3 साल 2 महीने बीत चुके थे। हालांकि आर्यांश का अचानक से जाना उन सबको हैरान कर रहा था, और अभी तक दीवा तो क्या कपूर फैमिली में से भी कोई नहीं जानता था कि आर्यांश कहाँ है। दीवा ने फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इस बार उसने लाइफ केयर हॉस्पिटल के बजाय संजीवनी हॉस्पिटल चुना। एक प्रोजेक्ट के तहत दीवा सिक्किम के पेलिंगटाउन जा रही थी, जो कि प्रकृति के काफी करीब था, लेकिन साथ ही इतना ज्यादा विकसित क्षेत्र नहीं था। वहां के अस्पताल को संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने टेक ओवर किया था, और वो उस अस्पताल को डेवलप करना चाहते थे। एक तो ठंड, ऊपर से छोटी जगह, कोई भी उस जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं था। संजीवनी में काम करने वाला मेडिकल स्टाफ जानता था कि वहां ज्यादा केस भी नहीं आने वाले हैं। एक बड़े अस्पताल से निकलकर छोटे हॉस्पिटल में जाने से कोई खुश नहीं था। बस में ऊबड़ खाबड़ रास्ते को तय करते हुए मेडिकल स्टाफ शिकायत कर रहा था, लेकिन साथ ही वे दीवा के शांत बर्ताव को देखकर भी हैरान थे। दीवा उन सब में सीनियर डॉक्टर थी और उसे इंचार्ज बनाया गया था। सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, लेकिन फिर भी दीवा के चेहरे पर शिकन की एक छोटी सी लकीर भी नहीं थी। उल्टा वो बस से बाहर देखते हुए नेचर के व्यूज को एंजॉय कर रही थी। इस बीच उन सब की बातों से झुंझलाकर एक छोटे से बच्चे ने दीवा का हाथ पकड़ा। मम्मा, वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, उसने दीवा की तरफ छोटी आंखों से देखते हुए कहा। वो लगभग 6 साल का था और उसके बाल लगभग कंधे को छू रहे थे, जो उसे और भी क्यूट बना रहे थे। दीवा हल्का सा मुस्कुराई और उसके गाल को प्यार से खींचते हुए कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है शिव, आप बड़ों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, और मैं यहाँ अपने साथ आपको इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आपका वेकेशन चल रहा है। आपको एंजॉय करना है, ना कि दूसरों की बातों में ध्यान देकर उनसे लड़ाई झगड़ा। लेकिन मम्मा, मैं आपके बारे में बुरा कैसे सुन सकता हूँ, शिव ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है, दीवा ने सोचते हुए अंदाज में कहा, और फिर अपने बैग से हेडफोन्स निकालकर शिव को लगाते हुए बोली, तो क्यों ना आपके कान ही बंद कर दिए जाएं। दीवा ने शिव को अपनी गोद में बैठा लिया और उसके बालों में हल्का सा किस किया। उसने शिव को अपने सीने से लगा रखा था। जब भी दीवा शिव को अपने गले से लगाती तो मानो वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो बाहर की तरफ देख रही थी। पिछले 3 सालों में शिव उसके जीने का जरिया बन गया था। दीवा ने एक नज़र शिव की तरफ देखा और फिर से उसके गाल पर प्यार से किस किया। वो मन ही मन बोली, तो मेरी जिंदगी में तब आए जब मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया था। थैंक यू सो मच शिव, मुझे एक नई लाइफ देने के लिए। थैंक यू सुलेखा। शिव वही बच्चा था जिसकी माँ आर्यांश को पार्क में मिली थी। आर्यांश ने सुलेखा को अस्पताल में नौकरी दिलाई थी और उससे वादा लिया था कि वो शिव को दीवा के पास बार बार लेकर जाएगी। अस्पताल में 2-3 बार शिव से मिलने के बाद दीवा का उससे ऐसा रिश्ता बन गया कि वहाँ काम ना करने के बावजूद वो अक्सर उससे मिलने जाती थी। दीवा को हमेशा शिव के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता था, और इस दौरान सुलेखा का एक्सीडेंट हो गया। बदकिस्मती से वो बच नहीं पाई, और जाने से पहले उसने शिव की सारी जिम्मेदारी दीवा को दे दी थी, जिसे दीवा ने खुशी खुशी स्वीकार किया था। शाम को बस पेलिंग पहुंच चुकी थी। उनके रहने के लिए अस्पताल से ही लगभग 10 मिनट की दूरी पर एक बड़ी सी बिल्डिंग में इंतजाम किया गया था, जिसमें छोटे छोटे फ्लैट जैसे बने हुए थे। हालांकि बिल्डिंग पुरानी थी और सुविधाएं बिना के बराबर थीं, लेकिन इस जगह पर आकर दीवा को सुकून सा महसूस हो रहा था। दीवा शिव के साथ अपने घर में आई, जो ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था। मम्मा, क्या हमें सच में यहाँ रहना पड़ेगा, हम ठंड में जम तो नहीं जाएंगे, शिव ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। मैं सोच रही हूँ कि तुम जमने के बाद कैसे लगोगे, मेरे लिटिल से स्नोमैन के तो बाल भी लंबे होंगे, दीवा ने उसकी नाक खींचते हुए कहा और उसके पास जाकर बैठ गई थी। दीवा ने अपनी आंखें बंद की और सोफे पर लीन हो गई थी। तभी शिव ने उसके कंधे पर सिर रखा और बोला, मम्मा मुझे भूख लगी है, क्या मुझे आपके हाथ का स्पेशल खाना मिल सकता है जो आपने लंदन में बनाना सीखा था, वहाँ पर भी ठंड होती है और यहाँ भी। बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन पहले मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, तब तक तुम चेंज कर लो, कल हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट करना होगा, दीवा ने जवाब दिया। शिव ने उसकी बात पर हामी भरी और अंदर चला गया। अगर बाहर से कोई उनकी जिंदगी को देखता तो वो सच में काफी बोरिंग लगती। पूरे दिन हॉस्पिटल में काम करना और फिर शिव के साथ समय बिताना, दीवा का यही रूटीन था। दीवा ने रेस्ट करने का सोचा, तभी किसी ने उसकी घर का दरवाजा खटखटाया। दीवा तुरंत उठकर दरवाजा खोलने गई तो सामने एक बुजुर्ग आदमी और औरत खड़े हुए थे, शायद वो बिल्डिंग उन्हीं की थी। सर जी ने आपके आने के बारे में बताया था, हमने आप सबके लिए एक छोटी सी दावत रखी है मैडम जी, रात में बाहर काफी ठंड होती है लेकिन हम आग जला लेंगे, आंगन काफी बड़ा है, बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो चेहरे से ही काफी गर्म दिल लग रही थी। मैं ज़रूर आऊँगी। दीवा ने तुरंत उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। उसे धन्यवाद बोलने के बाद वे दोनों बाकी लोगों को इन्वाइट करने के लिए चले गए थे। उनके जाते ही दीवा ने गहरी सांस ली और तेज़ आवाज़ में कहा, शिव आज हमें कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम पार्टी में जा रहे हैं। आपका कुकिंग करने का मन नहीं था ना, वरना आप किसी पार्टी में नहीं जाती, शिव ने बाहर आते हुए कहा। दीवा ने उसकी तरफ हाँ में कंधे उचका दिए थे। शिव उम्र में भले ही 6 साल का था, लेकिन वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और तेज़ था। सिर्फ दीवा ही नहीं, नवीन और प्रार्थना भी उसे बहुत प्यार करते थे। दीवा को वहां पहुंचे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा और वो अच्छे से जानती थी कि किसका कॉल आया था। मैं पहुंच चुकी हूं मॉम, और प्लीज आप मुझे हर मोमेंट कॉल करके मेरी अपडेट लेना बंद करेंगी। मैं पहली बार बाहर रहने के लिए नहीं आई हूं, दीवा ने कॉल उठाते ही शिकायती लहजे में कहा। पहली बार नहीं, लेकिन लंबे टाइम बाद आई हो। शिव कहां है? ज्यादा ठंड है तो उसे वापस भिजवा देना, प्रार्थना के बजाय नवीन की आवाज आई। वो हैंडल कर लेगा और मैं उसके बिना नहीं रहने वाली हूं, दीवा ने जवाब दिया। कुछ पल के लिए कॉल पर बिल्कुल खामोशी छा गई थी। प्रार्थना ने इशारे से नवीन को कुछ कहने को कहा, लेकिन नवीन हिचकिचा रहे थे। प्रार्थना ने अपना सिर पकड़ लिया। वो खुद ही झुंझलाते हुए बोली, मैंने तुम्हें मिस्टर दीक्षित के बारे में बताया था ना दीवा, उनका बेटा भी डॉक्टर है, लेकिन वो इंडिया के बजाय US में जॉब करता है। इतना कहकर प्रार्थना चुप हो गई थी, लेकिन दीवा उनके कहने का इशारा अच्छे से समझ रही थी। दीवा ने बिना सोचे समझे सीधे सीधे कहा, हाँ आपने बताया था और मैंने मना करने के लिए भी कहा था। मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन उन्हें शिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आजकल सिंगल मदर होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो शिव को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है, प्रार्थना ने उसे समझाना चाहा, लेकिन दीवा ने बिना कुछ जवाब दिए कॉल कट कर दिया था। उसके चेहरे पर गहरी झुंझुलाहट के भाव थे, तो वहीं दूसरी तरफ नवीन प्रार्थना की तरफ घूर कर देख रहे थे। उसे फोर्स करना बंद करो, वो शादी नहीं करना चाहती है तो क्या प्रॉब्लम है, नवीन ने शांत लहजे में कहा। बात प्रॉब्लम की नहीं है, क्या वो उम्र भर अकेली रहेगी और मुझे उसकी आंखों में उदासी अच्छी नहीं लगती है। कहने को भले ही कह दे कि वो उसे भूल गई है, उसके जाने से उसे फर्क ना पड़ा हो, लेकिन मैंने शिव के पास होने के अलावा उसे कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा, प्रार्थना मुंह बनाकर बोली।
नवीन उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि प्रार्थना का कहना गलत नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दीवा की उदासी का कारण क्या था, आर्यांश के दिए हुए वे जख्म या फिर उसका अचानक बिना कुछ कहे इस तरह उसकी जिंदगी से चले जाना। कुछ पल की खामोशी के बाद प्रार्थना ने शिकायती लहजे में कहा, आपके चक्कर में मैं उसे ये भी नहीं बता पाई कि डॉक्टर दीक्षित का बेटा स्वयं भी घूमने के लिए सिक्किम गया है। उसने दीवा की फ़ोटो देखी थी और उसे वो अच्छी लगी थी। दोनों का प्रोफेशन भी सेम है, उन दोनों की तो बहुत सी चीज़ें भी मिलती हैं, स्वयं का भी ब्रेकअप हुआ है। प्रार्थना की बातें सुनकर नवीन ने अपना सिर पकड़ लिया था। उन्होंने चिढ़कर कहा, इस दुनिया में अगर 100 लोग रिलेशनशिप में हैं तो 90 लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, तो क्या तुम उन सभी 90 लड़कों का रिश्ता मेरी दीवा के साथ तय करने का सोचोगी? उनके रिश्ते के बीच में अभी भी कुछ अधूरा रह गया था, चाहे वे शिकायतें हों या प्यार। आगे बढ़ने के लिए पहले के जख्म भरने ज़रूरी होते हैं, और जब तक दीवा अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकल पाती, मुझे नहीं लगता कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, और आज के बाद हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। नवीन ने आखिरी लाइन कहकर उस डिस्कशन को वहीं पर ख़त्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ दीवा पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने शिव को स्वेटर और कपड़े पहना दिए थे, जबकि वो खुद अपनी जैकेट पहन रही थी। उसका लुक काफ़ी सिंपल था, बालों को भी दीवा ने चोटी में बांध रखा था और सिर पर वुलन कैप लगाया था। स्कार्फ लगाने और मोटा सा जैकेट पहनने के बाद दीवा बाहर निकली तो शिव उसकी तरफ गौर से देखने लगा। कुछ पल रुककर उसने इम्प्रेसिव फेस बनाकर कहा, काफ़ी सिंपल लग रही हो, पर एज यूजुअल आप ब्यूटीफुल हो, तो कुछ भी पहनोगे अच्छी ही लगोगी। मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, दीवा ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। इसे एडमिरेशन कहते हैं डॉक्टर गोयंका, शिव बोला और दीवा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। बाहर पूरा मेडिकल स्टाफ इकट्ठा था और तैयारी सिंपल ज़रूर रखी गई थी, लेकिन उस बुज़ुर्ग कपल का बर्ताव उनके लिए बहुत ही प्यार भरा था। सब लोग उस वार्म वेलकम से काफ़ी खुश हुए थे। सब लोग आग के आसपास डांस कर रहे थे, म्यूज़िक बज रहा था। इस बीच शिव की नज़र दीवा की तरफ गई, जो अपने पेट को पकड़कर काफ़ी रेस्टलेस होकर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। शिव के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। वो उठा और दीवा का हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए बोला, फिर पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, नॉर्मल सा है, दवाई लूँगी तो ठीक हो जाएगा, दीवा ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, शिव ने जवाब दिया और जाने को हुआ, तभी दीवा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। फिलहाल ख़त्म है, पर दीवा बोलने को हुई, लेकिन उसकी आवाज़ में छुपी बेचैनी बता रही थी कि उसके पेट में कितना दर्द है। यहाँ सब डॉक्टर हैं, आप किसी से भी हेल्प मांग सकती हैं, शिव ने जल्दी से कहा। अच्छा ठीक है, मेडिकल पास ही है, मैं आती हूँ, तुम प्लीज़ यहीं पर रहना, 15-20 मिनट में आ जाऊँगी, और घर जाओ तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना, वैसे तो ये जगह काफ़ी सेफ है, पर फिर भी दीवा शिव को हर एक चीज समझा रही थी। वो उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, फिर भी मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, जल्दी जाइए। शिव को वहीं पर छोड़कर दीवा धीमे कदमों से चलते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। जब वे यहां पहुंचे थे तब दीवा ने आसपास के इलाके को ध्यान से देख लिया था और मेडिकल स्टोर उस जगह से 5 मिनट की ही दूरी पर था। रात के लगभग 9 बज रहे थे और इलाका छोटा होने की वजह से आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। दीवा जब मेडिकल स्टोर पहुंची तो वहां एक औरत थी और दीवा ने जो दवाइयां मांगी थी उसे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मेरे पति फिलहाल किसी काम से गए हैं और दवाइयों का स्टॉक आज ही आया है, आप उधर जाकर देख सकते हैं, उस औरत ने अंदर स्टोर की तरफ इशारा करके कहा। दीवा ने महसूस किया कि वहां के लोगों का बर्ताव काफी अच्छा और मिलनसार था। दीवा ने हामी भरी और अंदर चली गई थी। वो दवाइयां देख रही थी तभी इस बीच उसे बाहर से एक हड़बड़ाहट भरी आवाज सुनाई दी, मुझे ये दवाइयां अभी चाहिए, इट्स रियली अर्जेंट। दीवा को लगा कि वो औरत दवाई दे नहीं पाएगी और डॉक्टर होने के नाते मदद करने के लिए जब उसने दूसरी तरफ झांका तो एक पल के लिए उसके पैर वहीं पर जम गए थे। वो हल्का लड़खड़ा गई थी और उसने गिरने से पहले वहां की अलमारी को पकड़ लिया था। वहां मेडिसिन लेने आया शख्स कोई और नहीं, आर्यांश था। चलो मैंने ज्यादा लंबा नहीं खींचा और आर्यांश दीवा की मुलाकात जल्दी ही करवा दी। पर आर्यांश यहां क्या कर रहा है, बाकी सब अगले चैप्टर में पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।